चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां है। कदम से कदम मिल चले आप है साथ में, जब चले है उमंग है उल्लास। एक नई सोच नया विश्वास, एक नई
दिए जले के बुझे आफताब जरूर आएगा, दिए जले के बुझे आफताब जरूर आएगा, यकी करो न करो इनकलाब जरूर आएगा। लेकिन विचारों के इस इनकलाब के लिए इस नई सोच पर हमारा विश्वास जरूर हो। नमस्कार, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने आदरणीय उषा दीदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सतयुगी नई दुनिया और सृष्टि के कालचक्र के विषय में जाना। आज भी हम अपनी कुछ जिज्ञासाओं का हल उनसे प्राप्त करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू
दीदी। पिछली कड़ी में आपने कालचक्र के रहस्य को बताते हुए चारों युगों के बारे में बताया कि सतयुगी नई दुनिया आने वाली है, मगर हमने ये सुना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में वर्तमान समय को संगम युग कहकर के बुलाते हैं। शास्त्रों में चार ही युग वर्णित हैं, तो ये पांचवा युग कहां से आया, इसके बारे में कृपया स्पष्ट कीजिए।
ये तो जरूर है कि शास्त्रों में चार युगों का वर्णन किया गया है और ब्रह्मा कुमारी में भी हम चारों युगों का ही वर्णन करते हैं, परंतु जैसे हर युग जब समाप्त होता है और दूसरा युग आरंभ होना होता है, तो इन दोनों के बीच में एक संधि काल का पीरियड होता है कि जहां काफी परिवर्तन
जी
आने लगता है। जैसे सतयुग से त्रेता युग आया, तो वो भी एकदम नहीं आ जाता है, एक संधि काल का समय होता है जहां पर कुछ परिवर्तन नजर आता है और फिर दूसरा युग आरंभ होता है। इसी तरह जब त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, उनके बीच में भी एक संधि काल का समय होता है कि जहां पर संसार में काफी उथल पुथल और परिवर्तन की प्रक्रिया नजर आती है
जी।
इसी तरह जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आना है, ये सभी मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि यहां समाप्त हुआ और यहां से शुरू होगा। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि जहां समाप्ति बता दी और यहां से वन से शुरू हो गया, नहीं। इन दोनों के बीच में भी एक संधि काल का पीरियड है। जैसे दिन और रात का चक्र हम देखते हैं,
हाँ,
तो रात जब पूरी होती है और दिन शुरू होने से पहले भोर या अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, यह संधि काल का पीरियड है
जी।
ठीक इसी तरह कलयुग जब समाप्त होना है और सतयुग आना है, तो उन दोनों को भी कनेक्ट करने वाला एक संधि काल का पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं संगम। संगम यानी जहां कलयुग और सतयुग दोनों का संगम है। इस युग में आत्मा और परमात्मा का भी संगम है
जी।
और इसीलिए हम इसको कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, कि जहां पर आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है, जिसके लिए कहा गया नर ऐसी करने करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। और ये सिर्फ भारत के शास्त्रों में कहा गया ऐसा नहीं है, बाइबल में भी ये लाइन आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। तो इसीलिए सिख धर्म में भी ये कहा गया है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कि मनुष्य से देवता बनाने में भगवान को देर नहीं लगती है। और इसीलिए ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग कि जहां परमात्मा आकर हर आत्मा का कल्याण करके पुरुष में से उत्तम पुरुष बना करके उनका उद्धार करते हैं
जी,
और उन्हें योग्य बनाते हैं, पात्र बनाते हैं सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। तो इसीलिए संधि काल को, कोई नए युग की बात नहीं है, लेकिन ये संधि काल के समय को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बात कही गई। बाकी तो हर युग जब भी समाप्त होता है, दूसरा युग आरंभ होना होता है, तो संधि काल होता ही है
जी।
लेकिन ये संधि काल जो है जिसमें एक महान परिवर्तन होना है, बाकी सब जो परिवर्तन हुए हैं ट्रांजिशनल चेंज था कि जिसमें संसार गिरती कला की ओर चला गया, लेकिन अब ये उत्थान की ओर जा रहा है। इसलिए ये कल्याणकारी युग का विशेष गायन है
जी।
पुरुषोत्तम जब कहा उसको,
हाँ जी,
इसीलिए आप जानते होंगे कि भक्ति में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं
जी जी,
3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास आता है
एकत्रित मास के रूप में।
हाँ, एकत्रित मास के रूप में। और उस मास में लोग विशेष भक्ति, दान, पुण्य, माना रिलीजियस कार्य में अपने आप को जोड़े रखते हैं कि कोई बुरा या कर्म न हो। वास्तव में ये इसी समय का यादगार है कि 3 युग के बाद जब ये 4th युग में संधि काल का पीरियड आया
जी,
कि इस युग में अगर हम परमात्मा को अनन्य भाव से याद करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो मनुष्य पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने योग्य हो जाता है या पात्र हो जाता है
जी।
इसलिए इसको संगम युग कहा गया है।
तो कुल मिला के इस वक्त के ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को संगम युग कहकर के बुलाते हैं
जी।
तो दोस्तों, 2 युगों के इस संधि काल को संगम युग कहा जाता है। दीदी, हमारे बीच में दर्शक मौजूद हैं, हमेशा की तरह अपनी कुछ जिज्ञासाएं दिए हुए, जो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं
जी।
नमस्कार दीदी, मेरा नाम हरीश कुमार है, मैं दिल्ली से हूं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपकी संस्था बहुत समय से विनाश होगा ये कहकर सबको डरा रही है, लेकिन अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, इसके विषय में आपका क्या कहना है?
ऐसा है कि विनाश के नाम से हम डराते नहीं हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति जरूर लाते हैं कि जिस प्रकार समय परिवर्तनशील है, और इस समय के अंदर देखा जाए तो परिवर्तन के बहुत सारी बातें ऐसी सामने आएंगी कि जिस समय मनुष्य कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या करना है। विनाश भले हो ना हो ये बात दूसरी है, लेकिन आज व्यक्ति का अपना भरोसा तो कहीं है नहीं। विनाश खाली एक समय का या एक स्थान का, एक प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज का नहीं है, लेकिन विनाश का मतलब है कि कोई भी चीज जब अति में जाती है तो उसका अंत निश्चित है। तो इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो आज मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका अंत होने का भी समय आ चुका है। और इसीलिए हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज मनुष्य जब गलत कर्म करता है, तो उसके जीवन में जिस तरह की परीक्षाओं से, परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, उस समय उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे ये कैसा समय है। उस समय उसे यही कभी कभी डर महसूस होता है कि कहीं इसमें हमारा अंत न हो जाए। तो डर, भयभीत होकर के जीना, यही स्पष्ट करता है कि ये मृत्यु के बराबर ही है। जीना मरने के बीच में अगर व्यक्ति ऐसे झूल रहा है तो उसको तो यही कहेंगे ना कि आज ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय निश्चित नहीं है, ये समय ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जी बिल्कुल,
चाहे प्रकृति के द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्मा द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भी तरह से ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो कुछ भी हो सकता है। अब जब सुनामी आई थी तो लोगों ने सोचा था क्या, पता भी नहीं चला। आज मनुष्य के पास इतने भौतिक साधन है
जी।
लेकिन उसके बावजूद भी एक सेकंड पहले भी किसको पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। तो सारी दुनिया में कोई एक साथ में विनाश आने वाला है ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकृति के तत्व निमित्त बनेंगे, कहीं कहीं व्यक्ति निमित्त बनेंगे कि विनाश को सर्जने के लिए। और जिसके अंदर जैसे होलसेल में एक लोगों के मौत हो जाएंगी तो विनाश तो हो ही रहा है। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ उसके बाद कंटिन्यू समय प्रति समय विनाश लीला हमने देखी है और देखते रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे प्रकृति भी संकेत दे रही है कि अब तो सुधरने का वक्त आया है, अब तो जागृत हो जाए हम अपने कर्म के विषय में और पूरे कर्म न करें जिससे प्रकृति भी हमें माफ नहीं करेंगी, आने वाली जेनरेशन हमें माफ नहीं करेगी और लोग भी हमें माफ नहीं करेंगे, या कभी कभी खुद भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएंगी तो इसको क्या कहेंगे। तो विनाश के नाम से डरने की बात नहीं है, विनाश से कोई डर नहीं होता। सोचते कई बार, कई लोग सोचते विनाश होगा एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, वो डर क्या है। लेकिन आज जब मनुष्य तिल तिल मर रहा है तो ये विनाश नहीं हो रहा है, उसके संस्कारों का विनाश हो रहा है, उसके मूल्यों का विनाश हो रहा है, उसकी पॉजिटिविटी का विनाश हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है
जी।
मनुष्य के अंदर की सारी अच्छाइयों का विनाश हो ही रहा है ना, तो कौन कहता है विनाश नहीं हो रहा है, विनाश हो ही रहा है
जी। दीदी, विनाश की परिभाषा जो आप बता रहे हैं वो ये बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं विनाश हर स्तर पर हो ही रहा है, लेकिन विनाश एक भयावह शब्द तो है जिसको सोच करके, जिसको सुन करके काफी सारे ख्यालात हमारे मन में चलते हैं। अगर ये होना ही है आपके मुताबिक, अटल ही है, तो ये किस प्रकार से होगा?
इसमें मनुष्यात्मा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, मत भेद, ये भेदों के कारण कई लड़ाई झगड़ा होगा और इस लड़ाई झगड़े में भी कई आत्माएं खत्म हो सकती है। लेकिन इतनी सारी जो लाशें गिरेगी, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय हमने देखा कि भाई एक बम ने कितना बड़ा विस्फोट किया कि पूरे शहर के शहर तबाह हो गए। अब ये सारा शहर जो तबाह होगा, आज ऐसे कई गुना पावरफुल मिसाइल्स बने हुए हैं, है ना, जिसको शास्त्र में कहा कि भाई लोगों ने के रावण के पास अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे थे जो एक में ही सबको खत्म कर देते थे
जी।
तो ठीक इसी तरह अभी जो मनुष्य के पास मिसाइल्स बनाए हुए हैं वो उस एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पर लगाया गया था उससे कई गुना पावरफुल है
जी।
अब ये एक बम के द्वारा जब विनाश होगा और इतना भयावना वातावरण होगा और उस समय जो रेडिएशन और जो एटमिक रेज होंगे वो कितना प्रदूषित करेगा वातावरण को भी, तो उसको सफाई कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर सत्युग आ नहीं सकता है
जी।
तो उसको सफाई करने का कार्य फिर प्रकृति का होगा कि प्रकृति के पांचों तत्व हलचल मचाते हुए वो सफाई का काम करेगी, क्योंकि इतना मलबा आदि गिरा होगा, इतना जो कीचड़ होगी, बांस होगी, इतने मृत शरीर होंगे तो उसके जलाने वाला कोई नहीं, ये सब जो होगा
जी,
तो उस समय कई प्रकार के रोग फैल जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीजों का विनाश करने का कार्य जो है प्रकृति का है, कि हल्की चीजों को जैसे वायु उड़ाएगा तो भारी चीज जो होगी तो एक भूकंप आएगा उसी में समा जाएगा, या सुनामी लहर आई तो कुछ सागर अपने उसमें भूगर्भ में ले जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति को हमेशा भारत के अंदर कहा गया है देव
जी,
हाँ, वायु देवता, अग्नि देवता। तो अग्नि देवता क्यों कहा? क्योंकि देवों की सृष्टि सत्युगी दुनिया को लाने के लिए, साकार करने के लिए संसार में ये प्रकृति के पांचों तत्व ने उस समय बड़ा सहयोग दिया, और सफाई करके देवों की सृष्टि प्रैक्टिकल आ सके, सत्युगी दुनिया प्रैक्टिकल आ सके इस धरा पर, उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए उनको देवा का रूप दिया गया, अग्नि देवता। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आग जलाएंगी, कुछ ऐसी चीज होंगी जो पानी खत्म करेगी, सफाया करेगी। बाढ़ आती है तो कितना सफाया हो जाता है
जी,
लाखों लोग उसमें ये हो जाते हैं, कई चीजों का सफाया हो जाता है। तो इस तरह से प्रकृति के पांचों तत्व जो है सफाई का काम करेगी। तो कुछ मनुष्य जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, ये भेदों के कारण लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ एटॉमिक विस्फोट होंगे या मिसाइल युद्ध होंगे, और कुछ प्रकृति के तत्व सफाई के कार्य में सहयोग देंगे। इस तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया, विनाश नहीं कहेंगे हम, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया चलेगी
जी।
क्योंकि परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, लेकिन ये परिवर्तन एक महान परिवर्तन है।
दीदी, आप जो महापरिवर्तन और इस विनाश के बारे में जो बता रहे हैं, इसे लेकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे बीच में हैं, उनसे एक प्रश्न लेते हैं।
नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम जिनेंद्र है, मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी संस्था में विनाश को लेकर बहुत सी बातें होती है, भगवान ने क्या आपको कोई विनाश की डेट बताई है? अगर बताई है तो कौन सी है?
बहुत सुंदर सवाल है। जब भगवान ने इतनी सुंदर बातें बताई है, कभी कभी उसको स्वीकार करने के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता है। तो अगर तिथि तारीख बता देते थे तो उसको कहां से स्वीकार करते थे। और मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ने सारा ज्ञान तो दिया हमें, लेकिन ये बहुत अच्छा किया जो तिथि तारीख नहीं बताई। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर भगवान तिथि तारीख बता देते थे तो शायद मनुष्य ईश्वर को याद करने के बजाय टाइम कॉन्शियस हो जाता था, और इतना टाइम कॉन्शियस हो जाता था कि उससे जीवन को उन्नत करने का या अच्छे कर्म करने का पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे मैं अगर एक मिसाल बताऊं कि आज एक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई 24 घंटे हैं तेरे पास में
जी,
तुम्हें जितना भगवान का नाम लेना है ले लो, टाइम दे दिया उसको 24 घंटे हैं। अब वो भगवान का नाम कितना लेगा बताओ? भगवान का नाम लेगा कि घड़ी 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 की तरफ देखता रहेगा कि अब कितना मिनट बाकी है, कितना मिनट, एक एक मिनट उसके लिए ऐसी चलेगी कि भगवान का नाम तो ले नहीं सकेगा, स्ट्रेस बिल्ड हो जाएगा, कोई अच्छे कर्म नहीं कर सकेगा, इतना टाइम कॉन्शियस हो जाएगा, है ना। अगर उसको कहा जाए कि चलो तो भगवान का नाम नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, तेरे पास जो कुछ भी है दान करके पुण्य तो कमा ले, तो कितना दान और पुण्य कर सकेगा? न दान कर सकेगा न पुण्य कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद में नहीं मरा तो ये भी डाउट है कि नहीं मरा तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसको समय पर विश्वास नहीं है। और जहां समय पर ही विश्वास नहीं है तो भगवान पर विश्वास कहां से होगा। इसलिए भगवान टाइम नहीं बताता है, डेट नहीं बताता, तिथि नहीं बताता, क्योंकि नहीं तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सके। ना भगवान का नाम ले सके, ना कोई माला जप सके, ना कोई अच्छा कर्म कर सके, इतना टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने शुरू से कहा है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब जो थोड़ी बची है उसमें तो अच्छा कर्म करो
जी।
तो उससे क्या होगा, टाइम पीरियड नहीं देने से व्यक्ति उस रीति से निश्चिंत हो गया और अच्छा कर्म कर सकता है।
दीदी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे हम वाकई में अगर हमें ये पता चल जाता है कि आखिर किस दिन ये परिवर्तन या फिर ये विनाश होने वाला है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि सवाल मेरे मन में आ रहा है जब आपने विनाश और परिवर्तन के बारे में बताया, क्या इस परिवर्तन के लिए, इस महापरिवर्तन, इस ट्रांजिशन के लिए इस विनाश को टाला नहीं जा सकता?
नहीं, टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह आज एक मकान जर्जरीभूत हो गया, एकदम उसका फाउंडेशन ही सड़ गया हो
जी,
और कहे कि भाई इस मकान को गिराओ ही नहीं, इसी में रहो, रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना दिन चलाएंगे, वो कभी भी अपने आप गिरेगा, और अपने आप गिरेगा तो और भी नुकसान करेगा। इसीलिए समझदार लोग जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिरा देते हैं और फिर नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जब नया कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर वो रहने लायक बन जाता है, अच्छा दिखता है। अगर पुराने को ही मरम्मत, एकदम सड़ गया है और उसी में मरम्मत करते रहे करते रहे करते रहे तो चल नहीं सकता है। तो जब कोई चीज बहुत पुरानी हो गई, जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसको गिराना या तोड़ना ही समझदारी है, तब हम नया बना सकते हैं। तो आज जब ये संसार में प्रकृति इतनी पोल्यूटेड हो गई है, समय ऐसा हो गया है, तो इसलिए पांचों तत्व देखा जाए, ओजोन लेयर्स में होल्स हो गए हैं, अब इसको मरम्मत कैसे करेंगे, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ऑक्सीजन का सोर्स कट रहा है, खत्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रकार से हो रही है, ये सारे लक्षण है कि अब इस संसार के अंदर एक महान परिवर्तन, यानी एक महाविनाश करते हुए परिवर्तन करके नए को स्थापित करना ही ज्यादा समझदारी है।
दीदी एक बात और पूछना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि ये परिवर्तन को टाला नहीं जा सकता आपने बताया, लेकिन क्या दया का सागर कहलाने वाला भगवान इस परिवर्तन को शांतिपूर्ण रूप से नहीं कर सकते?
शांतिपूर्ण रूप से ही तो कर रहे हैं, आज 79 ईयर्स हो गए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्थापन हुए, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, परिवर्तन संस्कारों में लाने का कार्य जो आरंभ किया है कि व्यक्ति के जीवन को दिव्यकरण करना, डिविनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड जिसको कहा जाए, तो ये शांति से ही हो रहा है। तो स्थापना का कार्य तो पूरा शांति से ही हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो नया मकान बन जाएगा तो पुराना गिर जाएगा
जी।
तभी इसलिए विनाश को टालने का जो सोचते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई वो तो कभी भी गिरने वाला है, तो उसमें रहने का सोचना ये कहां की समझदारी है। तो परमात्मा ने जो कार्य आरंभ किया है वो शांति से ही किया है, कोई हल्ला गुल्ला करके नहीं स्थापन कर रहा है नई दुनिया, लेकिन शांति से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा और हर इंसान से पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो कितना शांतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 79 ईयर्स हो गए, तब जाकर के आज दुनिया को मालूम पड़ा है कि हाँ ब्रह्मा कुमारीज नाम की संस्था है, कि जो दुनिया के अंदर की कह रही है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, इतना साइलेंटली कार्य किया ही ना परमात्मा ने, तो शांतिपूर्ण ही कर रहा है
जी। स्थापना का कार्य शांति से हुआ है, लेकिन इस महापरिवर्तन का होना अटल है,
अटल है, ये तो हर कोई मानता है
जी। और ये बात सत्य है, और इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार लिया जाए उतना सभी के लिए अच्छा।
कहने का भावार्थ, समय परिवर्तन होने से पहले अगर हम परिवर्तन हो जाए
जी,
ये समझदारी है। नहीं तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं
जी।
और समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, वो समय बड़ा दर्दनाक होता है
जी।
इसलिए समय क्या इशारा दे रहा है, समय क्या संकेत दे रहा है, उस समय के संकेत को भी समझते हुए जो परिवर्तन को अपना लेता है जीवन के अंदर, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
दीदी, जिस महापरिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, जो कि अटल है, जिसके बारे में आपने आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक आधारों पर हमें जानकारी दी, मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और हमें इन सारी जानकारियों से अवगत कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कहा भी जाता है कि दुनिया में जो चीज नई बनी है वो पुरानी अवश्य होगी। आज ये पूरी दुनिया ही पुरानी हो गई है, और इस सत्य को हमें स्वीकारना होगा कि दुनिया पुरानी हो चुकी है और एक महापरिवर्तन की ओर बढ़ रही है। तभी तो आने वाली नई दुनिया, जिसे हम सत्ययुग कहते हैं, वह आएगा। आपकी इस विषय से संबंधित कुछ और जिज्ञासाएं अवश्य होंगी, जिन पर हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414033 65।